हनुमान भट्ट रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाए गोसाईर करी चरण वंदन। इच्छाए गोसाईर करी चरण वंदन। जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। इच्छाए गोसाईर जर मुई तार उदास। इच्छाए गोसाईर जर मुई तार दास। तास बार पाद रेणु मोर पंचग्रास। तास बार मोर पंचग्रास। तास बार पाद रेणु इच्छाए गोसाईर जबे व्रजे कैलो वास। इच्छाए गोसाईर जबे व्रजे कैलो वास। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया माना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय राधेश्याम। जय नितय गौरंग जय गौर हरि। जय नितय गौरंग जय गौर हरि। नितय गौरंग जय गौर हरि। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री हरि नाम संकीर्तन की। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो श्री जीव गोस्वामी पाद की आविर्भाव कथा हम गा रहे हैं। तो प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम जैसे जानते हैं श्रील जीव गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक आचार्य हैं और श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके भतीजे हैं। तो उनके दोनों के एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्री वल्लभ था, जिनको अनुपम करके भी बुलाते थे। तो बचपन से वो श्री रामचंद्र के भक्त थे और सदैव रामायण पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। कौन से प्रसंग है रामायण में, जब ही सीता देवी का हरण किया जाता है तो राम जी का कैसे विलाप होता है। सबसे प्रथम तो राज्याभिषेक का दिन है, उसी दिन क्या बता रहे हैं उनको, उनकी सौतेली माँ बता रही हैं अभी आप वनवास चले जाओ। तो तुरंत रामचंद्र जी तैयार होते हैं, सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं, कौशल्या देवी रो रही हैं, दशरथ महाराज पुत्र पुत्र हा राम कहाँ गए ऐसा करके रो रहे हैं। तो ये पूर्ण रामायण जो है करुणामय है। तो ये रामायण भगवान रामचंद्र के भक्त होने के कारण अनुपम जी जो हैं वो सदैव भाव विभोर रहते थे। तो उनको रूप सनातन दोनों उनके बड़े भाई हैं, तो उनके उनको कहा कि भगवान रामचंद्र जिनके अवतार हैं वो कृष्ण का आप भजन करो करके। तो जैसे आप कृष्ण का भजन करेंगे तो भगवान नारायण का वैसे ही भजन हो जाएगा अपने आप, रामचंद्र का भी अपने आप भजन हो जाएगा, वामन देव आज वामन द्वादशी है उनका भी भजन हो जाएगा। तो कहे वो कि ठीक है आप मुझे ये मंत्र का उपदेश कीजिए, कौन से मंत्र से कृष्ण का भजन किया जाए। तो उनका कृष्ण मंत्र देते हैं रूप सनातन। और दूसरे दिन आ रहे देखा कि अनुपम जो श्री वल्लभ है उनकी आंखों से आंखें पूरी लाल हो चुकी है, पूरे रात भर सो नहीं पाए और दोनों अपने बड़े भैया के चरणों में गिरकर कहे कि देखिए कि आपने आपके कहने पर मुझे लगा कि मैं भी कृष्ण की आराधना करूंगा, लेकिन मैं रामचंद्र के चरण छोड़ नहीं सकता। कह रहे हैं कि रामचंद्रेर चरणे बेचिया छो माथा, काड़ी तेना पाए माथा मने पाए व्यथा। कह रहे हैं कि रामचंद्र के चरणों में मैंने अपना सर बेच दिया है। अभी कुछ बेच दिया तो वापस ले सकते हैं किसी को, आप किसी वणिक के पास जाइए, वहाँ पे लिखा होता है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो एक बार मैंने अपना सर दे दिया है रामचंद्र को तो मैं वापस नहीं ले सकता अभी उसको मैं। तो जैसे रूप सनातन सुनते हैं उनसे तो दोनों क्या करते हैं, एकदम गाढ़ आलिंगन दे देते हैं अनुपम को और कहते हैं कि आप जैसी स्वामी निष्ठा, आपकी स्वामी निष्ठा देखकर हम बहुत संतुष्ट हो गए। तो ये जब किस्सा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सुनाया तो उन्होंने क्या कहा, सही प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन, सही भक्त जन धन्य जेना छाड़े प्रभुर चरण। वो भक्त धन्य है कि कुछ भी प्रलोभन आ जाए तो भी अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, और वो प्रभु भी धन्य है कि कुछ भी हो जाए अपने भक्तों को नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये अनुपम और उनके पुत्र श्री जीव गोस्वामी हैं, तो बचपन से ही उनको अपने पिता और अपने चाचाओं का जो वैष्णवता है उसका संग प्राप्त हो गया। और जब भी रूप सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे राम के लिए में, चैतन्य महाप्रभु सारे अपने भक्तों को लेकर वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे थे, तो बीच में अनेक अनेक भक्त जुड़ रहे हैं उनको, तो सब अपना घर परिवार छोड़ के महाप्रभु के पीछे भाग रहे हैं, चलो महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो इस प्रकार उनसे पीछे पीछे जा रहे, राम के लिए पहुंच गए। तो राम के लिए पे वो नवाब हुसैन शाह था, तो रूप सनातन गोस्वामी को लगा कि थोड़ा सा हमको सावधान करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को, उनको इधर रुकना बहुत ही जोखिम है उसमें। तो रूप सनातन जब ही भेष बदल कर जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये जीव गोस्वामी को भी छोटे जो 4 साल के थे तभी उनको लेके जाते हैं, पूरा उनको निवेदन करते हैं कि आप इधर मत रुकिए। पहले तो अत्यंत दयनीयतापूर्वक कहते हैं कि हम नीच हैं, अधम हैं, नीच जाति, नीच संगी करी नीच कर्म। बोलते जगाई मधाई से भी हम नीच हैं, क्योंकि जगाई मधाई तो धाम में रहते थे और किसी यवन का सेवा नहीं किया था उन्होंने, लेकिन हमको तो यवन का सेवा करने को पड़ रहा है, तो कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, आजी है ते तुम्हार नाम रूप सनातन। आजी है ते तुम्हार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ी तुम्हार दैन्य फाटे मोरा मन, दैन्य छाड़ी तुम्हार दैन्य फाटे मोरा मन। तो कह रहे हैं यहाँ पे ज्यादा करके हम कभी किसी के साथ कुछ वार्तालाप होता है तो कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा है तो बीच में आकर क्या कहते हैं, अरे प्रभु थोड़ा सा तृणाद भी सुनी चाहिए ना, थोड़ा नम्र बनिए, तो सारा वाद विवाद सुलझ जाएगा। तो यहाँ पे महाप्रभु को बोलने की आवश्यकता पड़ती है कि दैन्य छोड़ो, इतना दैन्य मत दिखाओ, मेरा हृदय फट रहा है आपके दैन्य नम्रता को देखकर। और उसके पश्चात जीव गोस्वामी इनको प्रणाम करते हैं, तो उनके सर पर चरण रखते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए इतने छोटी उम्र में ही महाप्रभु भगवान के आशीर्वाद उनको मिल गए। तो जैसे ही वो बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, बचपन से ही सारे वैष्णवता के लक्षण उनमें दिखाई पड़ रहे थे। तो जिसको बचपन से वैष्णव बनने का या वैष्णव तत्व ज्ञान जो है, भगवान का जो वैष्णव आचार है, वो अवसर मिलता है तो बड़ा भाग्य का वस्तु है, समझे है ना आप लोग को। बचपन से करने को मिल रहा है, नहीं तो क्या वो बहुत बार ज्यादा करके लोगों के बारे में क्या कहते हैं, वो 100 चूहे मार के बिल्ली चली हज को। तो बहुत सारे, वैसे तो भक्ति तो बहुत कृपालु है, तो ठीक है चाहे 100 चूहे के 1000 चूहे मारे हो, लेकिन बिल्ली को अगर अगर वृंदावन पहुंच गई तो क्या होगा, सारे पापों से वापस चूहे मारने का जो उसका स्वभाव था वो पूरा दूर हो जाएगा, भक्ति स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, और जो दुष्ट स्वभाव सब दूर हो जाएगा। तो ऐसे चाहे देर भली कभी ना हो, उससे अच्छा देर से आए हम भक्ति में, तो वो भी बड़ा भाग्य कहलाता है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी को बचपन से वैष्णवता का संस्कार मिल गया और महाप्रभु का दर्शन भी मिल गया, अपने रूप सनातन बड़े भैया का आशीर्वाद भी मिल गया। उसके पश्चात जब वो बड़े हुए, तभी सबसे प्रथम उनके हृदय में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मैं नदिया नवद्वीप में जाकर नित्यानंद प्रभु का दर्शन लूं, क्योंकि तब तक गौरांग महाप्रभु अपना अवतार जो है वो समाप्त करके अंतर्धान हो चुके थे। तो वहां पर जाकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए और नित्यानंद प्रभु से कहने लगे कि तोमार करुणा विना गौर नाही पाय, शत जन्म भजे यदि गौरांग हियाय। हियाय माने हृदय से, शत जन्म भी अगर गौरांग महाप्रभु का हियाय हृदय से भी भजन करे तो भी गौरांग नहीं मिलेंगे, जब तक क्या नहीं होगा, तुम्हारा करुणा बिना, नित्यानंद प्रभु की जब तक करुणा प्राप्त नहीं होगी तब तक गौरांग महाप्रभु नहीं मिलेंगे। शत जन्म भी अगर उनका भजन किया तो भी वो, इसलिए वो कहते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं वो है, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो आमी बोरो दुखी। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को क्यों, पहले चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे फिर नित्यानंद प्रभु के पास आ गए, मान लो अरे चैतन्य महाप्रभु तो नहीं सुनेंगे जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं प्राप्त होगा। और उसके बाद कह रहे हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय। तो बोले महाप्रभु का कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु के पास जाना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु का कृपा, दोनों का कृपा चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, अद्वैत आचार्य के पास जाना पड़ेगा, और अद्वैत आचार्य का कृपा चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, हरिदास ठाकुर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा सब घुमा रहे हम लोग को ये सब भगवान के अवतार, ताकि अंत में किसका शरण लेना पड़ेगा हमको, गुरु वैष्णव का संग लेना पड़ेगा, तब जाके अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। तो घुमा घुमा के हमको किधर ला रहे हैं, आचार्यों के चरणों में ही ला रहे हैं सारे ये जो भगवत अवतार हैं, लेकिन अच्छी तरीके से घुमा रहे, नहीं तो वो शूर्पणखा कैसे घुमा रहे थे, रामचंद्र बोल रहे थे अरे लक्ष्मण के पास जाओ, वे लक्ष्मण बोल रहे अरे रामचंद्र के पास जाओ, वैसा नहीं घुमा रहे हैं, हमको सही जगह पे ही हमको आश्रय दिला रहे हैं आचार्यों का। तो नित्यानंद प्रभु उनको पूरा नवद्वीप घुमाते हैं और शिवासंगन से चालू करते हैं, तो शिवासंगन में जैसे ही नित्यानंद प्रभु उनको लेकर आते हैं, साक्षात महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के साथ उनको दर्शन हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपसे अभी किनको किनको मालूम है, चार जगह पे गौरांग महाप्रभु सदैव आविर्भाव होगा ऐसा कहा है। तो कहाँ कहाँ पे होगा आप जानते हैं, एक कहाँ पे, हाँ शची के मंदिर में, यानी कि शची देवी जहाँ पे, शची देवी के घर पे, मतलब अपने माँ बाप के घर पे, वहां पर सदैव आविर्भाव होगा। और कहाँ पे होगा, श्रीवासांगन में, श्रीवासांगन, ये श्रीवासांगन में दिख रहे हैं ना। तीसरा कहाँ पे होगा, नित्यानंद प्रभु के नर्तन जहाँ पे होगा वहां पे सदैव गौरांग महाप्रभु उपस्थित रहेंगे। और चौथा राघव पंडित, राघव पंडित के घर पे या पाकशाला पे जहाँ पे दमयंती बहुत सारे व्यंजन बना रही है, तो ये चारों जगह पर आविर्भाव होगा। तो चैतन्य भागवत में कहा है, अद्याप यह सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तो कह रहे अद्यापि आज भी वही लीला उसी समय ये सारे लीला स्थलों पर संपन्न होती रहती है, तो कौन देख पाता है, कोन कोन भाग्यवान देखी बारे पाए। भाग्यवान माने क्या, कौन भाग्यवान है, हाँ थोड़ा जोर से, कोई भाग्यवान नहीं है कैसे भाग्यवान, कौन कौन देख पाता है, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कौन है जो देख पाएगा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो गौरांग नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो विषय दूर हो जाएंगे। विषय माने क्या, ये सारे इंद्रियों को तृप्त करने की, स्वयं के लिए तृप्त करने की जो सारी इच्छाएं वो जब चली जाएंगी, हृदय तभी शुद्ध होगा, तो शुद्ध हृदय से शुद्ध आंखों से भगवान को हम देख सकते हैं, मतलब भगवान की लीलाएं भी देख सकते हैं, तो वो भाग्यवान है। और रूप रघुनाथ पदे हई बे आकूति कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। जुगल की प्रीति भी कैसे समझ में आएगी, जब ही रूप रघुनाथ पदे हई भी आकुति। तो प्रभुपाद कहते रूप रघुनाथ मतलब जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सब आ गए उसमें, सनातन गोस्वामी भी। जब भी हम कहते हैं रूप रघुनाथ तो यानी उसमें छः के छः गोस्वामी आ गए, तो ये दो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, तो सारों के चरणों का। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौरांग महाप्रभु साक्षात दर्शन होते हैं उनको, और उनके उसके पश्चात शशि देवी के गृह में लेके जाते हैं, जहाँ पे विष्णु प्रिया अभी भी देवी उधर है, और कहती है जीव गोस्वामी को देख कर ही कहती है कि मेरे सपने में महाप्रभु आकर कहे कि जीव गोस्वामी को अपने पुत्र की तरह स्वीकार कर लेना। तो विष्णु प्रिया देवी सब व्यंजन बनाती है, महाप्रभु की जो विग्रह हैं उनको अर्पण करती है, उसके पश्चात जीव गोस्वामी को खिलाती है और कहती है महाप्रभु ने चार आपके लिए आज्ञाएं रखी है मेरे पास आपको देने के लिए। तो कौन सी चार आज्ञाएं? कह रहे हैं नाम सेवा, आप नाम की सेवा करो, धाम सेवा, वृंदावन धाम जाकर सेवा करो, विग्रह सेवा, जो भी रूप सनातन गोस्वामी विग्रह स्थापन करेंगे उनकी सेवा करो, और चौथी ग्रंथ सेवा, यानी कि आप बहुत सारे उत्तरदायित्व आपके ऊपर हैं तो वो आपको पूरा करना है। तो ऐसा विष्णुप्रिया देवी से आज्ञा पाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु उनको धाम दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, और जीव गोस्वामी उनको पूछते हैं कि ये नवद्वीप और वृंदावन धाम में क्या अंतर है, क्यों आप मुझे वृंदावन भेज रहे हैं, क्या मैं इधर नवद्वीप में रहकर भी सेवा नहीं कर सकता क्या? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नवद्वीप और वृंदावन में संपूर्णतः अभेद है, कोई फर्क नहीं है, तो और कोई महत्ता या लघुता नहीं है, दोनों समान है, लेकिन कलयुग में खास करके लोग इतने अपराधों से पीड़ित हैं या अपराध का जो पूंजी है इतनी ज़्यादा है कि धाम अपने आप को उसके सामने प्रकट नहीं करेगा, खास करके वृंदावन धाम। तो इसलिए सबसे प्रथम नवद्वीप में जाकर हरिनाम संकीर्तन करके नवद्वीप धाम की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि नवद्वीप धाम अपराधों का विचार नहीं करता। तो नवद्वीप धाम में जाकर जब भी हरिनाम करेंगे तो उस धाम की कृपा प्राप्त होगी, तब जाके वृंदावन हमें स्वीकार करेगा। तो आपने वो धाम की कृपा प्राप्त कर ली है, महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली है, अब आप वृंदावन जाइए और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा उत्तरदायित्व है। वृंदावन धाम लुप्त हो चुका है, किसको पता नहीं कौन सी लीला किधर क्या हुई, वहाँ पे भी महंत भी धीरे धीरे करके लुप्त हो रहे हैं, वहाँ के मंदिर भी लुप्त हो चुके हैं, तो क्या बचा अभी, विग्रह भी अभी पता नहीं किधर कौन से हैं कहाँ पर हैं। तो आप उधर जाकर ये सब जो उत्तरदायित्व है उसको निभाइए। सबसे पहले आप वृंदावन जाकर जो ग्रंथों को लिखने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, तो आपको संस्कृत व्याकरण सब कुछ जो न्याय इत्यादि ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप किसके पास जाइए, वाराणसी जाकर, वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य के छोटे भाई हैं मधुसूदन वाचस्पति करके, उनसे आप सीखिए और उसके पश्चात आप वृंदावन चले जाइए। तो जीव गोस्वामी मधुसूदन वाचस्पति से सब सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, श्री रामानुज भाष्य भी सीखते हैं, श्री मध्वाचार्य उनका भी जो भी प्रबंध है वो भी सब सीखते हैं, और इस प्रकार से सब सीखने के पश्चात वो वृंदावन चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जीव गोस्वामी के टीकाओं में बहुत बार रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं, मध्वाचार्य ऐसा कहते हैं, सब बहुत बार आप रेफरेंस जो प्रमाण है वो आप देखेंगे, क्योंकि वो दोनों का उन्होंने पूर्ण शास्त्र युक्त अभ्यास किया हुआ था। तो वृंदावन पहुंचने के बाद रूप सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, दोनों के पैर पड़ते हैं और रूप गोस्वामी के जो सनातन गोस्वामी जो है रूप जीव गोस्वामी को रूप जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी के आश्रय में दे देते हैं। और तो दो रूप गोस्वामी की बहुत ही जो अनेक अनेक सेवाएं हैं वो पूर्णतः पूर्ण उत्साह के साथ करते थे जीव गोस्वामी। जैसे जो तालपत्र है, भुर्ज पत्र जिसको कहते हैं, उसको पानी में उबाल के उसको सुखाना पड़ता है, और जो उससे वो जो कागज जैसा जो बनता है, और वो सुखाने के बाद स्याही कौन सी उपयोग करते थे, जो विविध खनिज होते हैं तो वो खनिजों से काला रंग निकाल कर उसका स्याही बनाया जाता था। तो अभी के जैसा इतना आसान काम नहीं था कि अरे बाजार चले गए और नोटबुक खरीद लिया और कोई भी पेन खरीद लिया और हो गया। तो ये बहुत सारा जो तुच्छ सेवा है वो करना अपने उत्साह से करते थे, पूरा जो आश्रम साफ करना इत्यादि सारे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी परिक्रमा करके आते थे तो उनका पैर दबाना, ये सारी सेवाएं जीव गोस्वामी करते थे। तो ऐसा एक एक बार वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्गी के प्रवर्तक आचार्य हैं, वो रूप गोस्वामी को मिलने आए और रूप गोस्वामी को उन्होंने पूछा आजकल क्या सेवा चल रही है आपकी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु में सारे हरि भक्ति का जो सारा विज्ञान है, जो सारे शास्त्रों से मुझे एकत्रित करने को श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है, उनसे मैंने शिक्षा भी प्राप्त की है, तो वो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वल्लभाचार्य कहते हैं आपको उसमें कुछ संशोधन करना है, शोधन करना है कुछ, तो मुझे बतलाइए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये तो मेरे अहो भाग्य है कि आप जैसे बड़े वैष्णव कि मेरे पुस्तक का संशोधन करेंगे। तो तुरंत जहाँ तक लिखा था रूप गोस्वामी ने उतना ग्रंथ उनको दे दिया। तो वहां पे जीव गोस्वामी बैठे थे तो सोचे कि मेरे गुरु के जो लेख है उसमें दूसरा कोई आकर संशोधन कैसे कर सकता है। तो वो बहुत ही नम्रता से वल्लभाचार्य के पास चले गए और उनको कहा कि अच्छा आप रूप गोस्वामी उनके इसका संशोधन करेंगे। तो बोले हाँ। तो कहे कि अभी तक कुछ कुछ गलती मिली क्या आपको उसमें। तो कहे ऐसे तो कुछ उसमें गलती नहीं है लेकिन एक गलती मुझे दिख रही है। तो बोले कौन सी गलती। तो बोले ये श्लोक देखिए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। कह रहे हैं कि व्याकरण में तो कुछ गलती नहीं है, मीटर वृत्त छंद में कुछ गलती नहीं है, लेकिन ये जो प्रयोग उन्होंने किया है उसका अर्थ होता है भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति मुक्ति की इच्छा जब तक हृदय में रहेगी, पिशाची वो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा या जगत से मुक्ति पाकर ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा, ये भगवान के सेवा से दूर भगाती है भक्ति से। हाँ तो ये इच्छा जब तक रहेगी तो भक्ति सुख तब तक कैसे उत्पन्न होगा हृदय में। तो ये भुक्ति को पिशाची कहा ठीक है, ये मुक्ति को पिशाची नहीं कहना चाहिए। पिशाची माने क्या, भूत, भूतनी तो ये भूतनी इसको नहीं कहना चाहिए। मुक्ति मुक्ति को तो हम देवी कहते हैं तो उसको हम पिशाची कैसे कह सकते हैं, तो वो नहीं कहना चाहिए था रूप गोस्वामी को। तो ये एक गलती मैंने अभी तक निकाली है। तो क्या कहते हैं जीव गोस्वामी कि अरे आप वल्लभाचार्य जी आपने ठीक से पढ़ा नहीं, मुक्ति को पिशाची नहीं कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा उसकी इच्छा को उसकी स्पृहा को पिशाची कहा गया है। तो वल्लभाचार्य कहते अरे मेरी मति ऐसे कुंठित कैसे हो गई कि मैंने इतना सरल सरल जो है वो विचार कैसे छोड़ दिया मैंने। तो तुरंत वो ग्रंथ लेकर रूप गोस्वामी के पास पहुंचे और उनको कहा कि क्षमा कीजिए, मैं तो आपका ग्रंथ तो संशोधन नहीं कर सकता। तो बोले क्यों क्यों नहीं कर सकते। बोले आपका शिष्य ही इतना बड़ा विद्वान है, बड़ा पंडित है, तो उसके सामने मैं क्या आपका संशोधन करूं, आप तो गुरु कैसे होंगे। तो गुरु के इसमें तो कुछ गलती होना, भ्रम होना, प्रमाद होना कोई संभव ही नहीं है। तो रूप गोस्वामी कहते नहीं 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 आप संशोधन कीजिए कीजिए। उनके पैर पड़ते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आप संशोधन कीजिए। और वल्लभाचार्य कहते नहीं 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 मैं तो बड़े गर्व के साथ आया था कि मैं कुछ आपको आपके इसका संशोधन करूंगा, लेकिन मैं तो विचार कर रहा हूँ कि नहीं मैं तो इसके लिए पात्र भी नहीं हूँ, ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो रूप गोस्वामी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और जीव गोस्वामी को बुलाते हैं, बोलते हैं आप इतना भी सहिष्णु नहीं है, ये बड़े वैष्णव आकर मेरी कुछ सेवा करना चाहते हैं, मेरा ये सारे वैष्णव के लिए ये सेवा करना चाहते हैं, मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं, और आप है कि उनको इस तरीके से आपने उनको लज्जित कर दिया, तो ये कौन सा सदाचार है? यह आपको तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि एक तो बड़े वैष्णव है, परम वैष्णव है, ऊपर से स्वयं होकर मुझे सहायता करना चाहते हैं, और ऊपर से मेरे मेरे अतिथि है। तो तीनों मर्यादा को आपने उल्लंघन किया तो आप ब्रज में नहीं रह सकते, आप चले जाओ। अगर आप इतना सदाचार पालन नहीं कर सकते हैं तो आप चले जाइए करके जीव गोस्वामी कहा। जीव गोस्वामी तो बहुत सारा वाद विवाद कर सकते थे, मैं अपने लिए थोड़ी किया, मैं तो आपकी जो महिमा गरिमा बचाने के लिए सब किया, लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी अत्यंत नम्रता से स्वीकार कर लिया और व्रज यानी वृंदावन के बाहर, यानी वृंदावन की त्रिसीमा है ना, कौन सी है? भांडिरवन, गोवर्धन, वैसे तो पूरे व्रज को भी वृंदावन कहते हैं, लेकिन अंदर के जो वृंदावन है उसकी तीन सीमा है, भांडीर, गोवर्धन, रासपीठ। रासपीठ माने जो वंशीवट, आप अगर परिक्रमा मार्ग में जाएंगे केशी घाट, वंशीवट, वो एक सीमा है, गोवर्धन दूसरी सीमा है, और तीसरी सीमा है भांडीरवट। तो ये तीन सीमाओं से के बीच में वृंदावन होता है, और वैसे तो पूरे ब्रजमंडल को वृंदावन कहते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं ग्रहण कर रहे अर्थ, तो वो नंद घाट जाकर रहते हैं। एक भाई गांव करके एक है वृंदावन में, तो उसके बाजू में नंद घाट है, जहां पर नंद महाराज को वरुण देव जो है जब भी नहाने के लिए गए थे, तो नंद वरुण देव के जो सेवक है उनको बांध कर लेके गए थे, और बाद में कृष्ण जब भी आए और अपने पिता को मोचन कर दिया उन्होंने, वरुण देव उनके पैर पड़ गए, बोले कि अरे मुझे पता नहीं था कि आपके पिता है करके, तो तुरंत लेकर आए, उनके भी पैर पड़े, भगवान के भी पैर पड़े, और नंद महाराज आश्चर्यचकित हो रहे, अरे वरुण देव मेरे पुत्र के पैर क्यों पड़ रहे तो ये जो घाट है उसको नंद घाट कहते हैं। तो वहीं पर एक मगरमच्छ का छिद्र हुआ करता था, तो उसमें रहते थे, मतलब मगरमच्छ नहीं था उधर अभी चला गया था, उसका छिद्र था, उसमें जीव गोस्वामी रहते थे, यानी कि कोई पर्णकुटी वगैरह भी नहीं था, नहीं थी। दिन रात हरे कृष्ण जपते थे, रूप सनातन का नाम लेते थे, और किसी कोई माधुरी करी देने के लिए आया तो वो ग्रहण भी नहीं करते थे। तो सनातन गोस्वामी घूमते घूमते ऐसे ये जगह पर पहुंचे, तो उनको किसी ने आकर बताया कि अरे आप तो हमको, हम तो आपको बड़े बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक कोई नया लड़का आया है, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य, दिन रात हरे कृष्ण जपता है और कुछ खाता नहीं है पीता नहीं, इतना हड्डी हड्डी हो गया है एकदम, तो आप देखिए कौन है। तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये हमारे जी गोस्वामी है, तो उनको लेकर रूप गोस्वामी के पास आते हैं। पहले तो रूप गोस्वामी उनको बाहर ही खड़ा करते हैं और कहते हैं महाप्रभु के तीन आज्ञाओं में से एक आज्ञा का पालन आपने नहीं किया। तो बोले कौन से आज्ञा का पालन? वो तीन आज्ञा दी थी, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। तो जीवे दया आप नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उनको कि तो रूप गोस्वामी समझ जाते हैं किन की बात कर रहे हैं, तो जीव गोस्वामी को वो स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं कि रूप गोस्वामी जैसे गुरु ने करना चाहिए उचित, अपने जगह पे बराबर थे, और जीव गोस्वामी जैसे शिष्य ने करना चाहिए उचित, तो अपने जगह पर बराबर थे, दोनों अपने अपने जगह पर बराबर थे। रूप गोस्वामी ये वैष्णव सदाचार सिखाना चाहते थे आने वाले सारी पीढ़ियों को, और जीव गोस्वामी बतलाना चाहते थे कि अपने गुरु में कुछ कोई आह्वान करे या कोई ये करे तो वो सहन नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आह्वान नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी सोचेगी कि ये गुरु के लिखाई में कुछ गलती नहीं है, उसको अगर होती तो ठीक है, उसको हम संभाल लेते, लेकिन नहीं है तो उसमें कोई गलतियां ना निकाले। तो उसके पश्चात एक बार कुछ पंडित एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगे, जो पूर्व देश के पंडित थे और पश्चिम देश के पंडित थे। पश्चिम देश के पंडित कहने लगे सारी नदियों में यमुना श्रेष्ठ है, और पूर्व देश के पंडित कहने लगे सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है करके। शास्त्रों के हिसाब से। तो दोनों में झगड़ा होने लगा, तो ये बात तो बहुत आगे बढ़ गई। तो तभी जो दिल्ली में सरकार थी अकबर, उसके पास चले गए और अकबर ने कहा कि कौन सा किसी बड़े शास्त्र के विद्वान को बुलाकर इसका वाद का, ये समस्या का हल निकाला जाए। तो जीव गोस्वामी को आवेदन करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि यहाँ ये दिल्ली के दरबार में आकर ये दोनों पंडितों का ये निकाले, आप हल निकाले दोनों, अंत में क्या निष्कर्ष है। तो जीव गोस्वामी कहे कि हम तो वृंदावन छोड़ के नहीं आएंगे, तो आप किसी और को बुलाइए। हमारा ऐसा क्या है, नियम है कि वृंदावन में कोई भी रात जो है हम वृंदावन में बिताएंगे, कोई भी रात हम वृंदावन के बाहर नहीं सोएंगे। तो आप चाहो तो इधर सभा रखिए वृंदावन में। तो अकबर कहते हैं नहीं, वृंदावन में सभा नहीं रखेंगे। वृंदावन तो उसने, अकबर ने नाम रखा था फकीराबाद, क्योंकि सब जो साधु हैं सब छोड़कर आते हैं इधर। तो कह रहे अभी तो मैं बादशाह हूं, वृंदावन में आऊंगा तो मुझे भी फकीर बनना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर। तो मैं वृंदावन में नहीं आऊंगा, डर डर गया वो। तो कहता है मैं आगरा आता हूँ, आप आगरा आइए, हम आपके लिए बंदोबस्त करेंगे कि सुबह आइए, शाम तक आपको हम वृंदावन छोड़ेंगे। तो जीव गोस्वामी तैयार हो जाते हैं और फिर वहां पर ये वाद विवाद होता है। तो जीव गोस्वामी को कहा जाता है कि आप बतलाइए कि गंगा और यमुना में श्रेष्ठ कौन है। तो जीव गोस्वामी क्या करते हैं, सबसे पहले गंगा का स्तुति करना चालू करते हैं। तो कहते हैं देखिए, हरि भक्ति कल्पलतिका में लिखा है, आनंद निर्झरम मयिम अरविंद नाभ पादारविंद मकरंद मय प्रवाहम तम कृष्ण भक्ति में वमूर्तिमान श्रवन श्रवंतिम वंदे महेश्वर शिरो कुंड मालाम। कि मैं गंगा देवी को प्रणाम करता हूँ जो चिन्मय रस से प्रवाहित है। जो चिन्मय रस कैसे प्राप्त हो रहा है, हरि के चरणों से प्रवाहित होने के कारण। गंगा देवी कहाँ से आती है, हरि के चरणों से आती है ना, विष्णुपदी एक और नाम है। और हरि के चरणों के आने के कारण शंभु के सर को पवित्र कर देती है। महेश्वर शिरोरुह कुंडमालाम। तो इस प्रकार गंगा का गुणगान करते हैं, महाभारत से बोलते हैं न गंगा सादृशम तीर्थम न देवा केशवात् परा। गंगा जैसी नदी नहीं है और केशव यानी कृष्ण जैसे आश्रय नहीं है। तो ऐसा अनेक अनेक श्लोक विविध शास्त्रों से बतलाते हैं, श्रीमद् भागवतम से बताते हैं। यस्यामलं दिवि यशा प्रतितं रसायां भूमौ चते भुवन मंगल दिग्वितानं मंदाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गंगेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम। तो तीनों लोगों को कैसे गंगा पुनाति पुनाति यानी पुनित कर देती है, उसका वर्णन करते हैं। फिर शंकराचार्य का गंगा स्तोत्र बोलते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। तो ये भी श्लोक उद्धृत करते हैं। तो विविध श्लोकों से, वराह पुराण से, यहाँ से वहां से, श्रीमद् भागवतम से गंगा की स्तुति कहते हैं करते हैं। तो जो गंगा श्रेष्ठ है बोलने वाले पंडित सब संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते भागवतम में भी लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। तो ये सब बतलाया है। तो ये बतलाने के बाद अभी यमुना का गुणगान सुनिए। कहते हैं देखते महाप्रभु स्वयं कहें, चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर ब्रह्म द्रव ब्रह्म गात्री पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री किरियानो वपुर मित्र पुत्री। तो कह रहे हैं कि चिदानंद भानो सदानंद सुनो की पर प्रेम पात्री है ये। तो और भी उनका गुणगान किया, बोले कि यमुना जी जो है वो गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी और सारी नदियां जो हैं वो यमुना देवी की सेवा करती हैं। और आगे ये भी शास्त्रों से उद्धृत पद्म पुराण से बतलाया उन्होंने। फिर बृहद भागवतामृत से एक श्लोक बताया यमुना देवी के बारे में, कहा कि यमुना देवी है साक्षात विशाखा देवी की विस्तारित रूप है यमुना। तो इस प्रकार से कहते हैं कलिंद तनये देवी परमानंद वर्धिनी सर्वापराध विमोचय स्नामिते सलिले शुभे। तो इस प्रकार से आगे कह रहे आदि वराह पुराण में लिखा है गंगा शतगुण प्रोक्ता मथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्या विचारणा। इसमें ज्यादा सोचिए मत, गंगा को 100 गुना अगर बढ़ाया जाए तो यमुना हो जाती है, मतलब पानी को नहीं महिमा को तो यमुना हो जाती है। तो ये सुनने के बाद जो यमुना का जो पक्ष वाले वो संतुष्ट हो गए, तो कहें कि अभी तो हाँ ये अभी तक जो विवाद है उसका पूर्ण तरह सामंजस्य नहीं हुआ, अंत में मैं जो बता रहा हूँ उससे सामंजस्य होगा। तो अंत में क्या बतलाएं, कहें कि ठीक है गंगा देवी जो है यमुना की बड़ी बहन होने के कारण उसको भी लगा कि मुझे भी यमुना जैसी जैसा सौभाग्य सेवा सौभाग्य प्राप्त हो, तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दी और साक्षात गौरांग महाप्रभु उनको प्रसन्न हुए और कहे कि मैं कृष्ण के स्वरूप में आप में स्नान किया स्नान केली किए, लेकिन मैं गौर स्वरूप में अभी आपको मैं क्या दूंगा ये अवसर दूंगा। तो मैं तो नवद्वीप में गंगा में नहाने से गौर प्रेम मिलेगा ऐसा कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु। तो एक से कृष्ण प्रेम मिल रहा है एक से गौर प्रेम, अभी कौन बड़ा हो गया तो कह रहे हैं कि यमुना देवी ने ही गंगा देवी को बतलाया था कि आप गौरांग महाप्रभु की उपासना करो, तो उससे उन्होंने ये सौभाग्य को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार वृंदावन में भी गंगा को सेवा करने का साक्षात अवसर मिला। कहां पर? वृंदावन में कृष्ण की सेवाओं में भी गंगा साक्षात मदद करती है। कहां पर? मानसी गंगा। तो नंद बाबा को एक बार नहाने की इच्छा थी गंगा में, तो वो जा रहे थे तो उनको कहा कि नहीं नहीं आप मत जाइए, कृष्ण कहते हैं यहीं पे प्रकट हुई है। तो देखा तो अपने मन से गंगा देवी को निमंत्रित किया और वहां पे गंगा देवी प्रकट हो गई और सारे गोप कहने लगे अरे तुमने ही रात को जाकर खुदाई की होगी और कुछ ये कुंड बनाया होगा, आप कह रहे हो ये गंगा है करके। और गोपियां कहने लगी तुम ये इसका नाम क्या है, तो कृष्ण कहते मानसी गंगा। तो गोपियां कहते मानसी गंगा यानी तुम्हारे मन से प्रकट हुई, हम तो सोचते हैं कि तुम मन में हमारे बारे में सोचते हो, ये गंगा के बारे में कैसे सोच रहे हो तुम, ये कौन नई सौत हमारे लिए लाई है आपने। तो कह रहे नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो गंगा के सामने क्या बोलूं मैं, अगर गंगा को मैं हृदय में रखता हूं बोलूंगा तो गोपियां नाराज होंगी, अगर नहीं रखता हूं बोलूंगा तो गंगा देवी नाराज हो जाएंगे, तो क्या बोलूं मैं। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं असल में ये शिव जी के सर्प को पुनित करने के लिए गंगा आई थी, तो उसकी वजह से ये कुंड में अभी प्रकट हुई है। तो गोपियां कह रहे शिव जी का है, तो कि ये बाजू में ही प्रकट है, तो चक्रेश्वर महादेव जो है ना चक्रेश्वर महादेव उनको दिखाते हैं, तो शिव जी भी सही समय पे भाग के आते हैं उधर दर्शन देते हैं और उनके सर से फिर गोपियां को क्या होती है सांत्वना हो जाती है, हाँ हाँ सच में कृष्ण सही बोल रहे हैं, हाँ इनके सर से आई होंगी मानसी गंगा। तो इस प्रकार से मानसी गंगा का उधर सौभाग्य उनको कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं इस पे आप वाद विवाद मत कीजिए, गंगा श्रेष्ठ है यमुना श्रेष्ठ है, दोनों कृष्ण की सेविका है। कि गंगा देवी उधर आती है गोपियों के कहती है कि मैं तो कृष्ण की दासी हूँ प्रेयसी नहीं हूँ, आप कृष्ण की प्रेयसी हैं करके तो सब गोपियों की सांत्वना हो जाती है उससे। तो इस प्रकार से तो पंडितों में कलह दूर हो जाता है। तो अकबर पूछता है जीव गोस्वामी को कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो जीव गोस्वामी कहते हैं आप क्या सेवा करेंगे, आप क्या मुझे दे सकते हैं, आप भी मेरी तरह ही भिक्षुक हैं, मैं जैसे भिक्षुक हूँ आप भी भिक्षुक हैं, आपको भी जो ये अभी राज्य दिया है किसने दिया है, सबको सब कुछ भगवान की कृपा से ही किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता जो भी है तो मुझे जो प्राप्त करना है वो मेरे कृष्ण भगवान हमको दे देंगे, आपसे मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो अकबर कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं साधु फकीरों की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो कुछ तो आप मुझे बतलाइए। तो उस जमाने में कागज बहुत महंगा हुआ करता था, तो अकबर खुद बोलता है कि मैं आपको कागज दूंगा जो जिसके ऊपर आप जो आपके ग्रंथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने भी बहुत सारे म्लेच्छ थे, यवन थे, और उनके तो हाँ, अगर मैं अपने हृदय में देखता हूँ तो वो म्लेच्छ यवन जो क्या धारणाएं हैं वो तो मुझ में और भी ज्यादा है, लेकिन लेकिन वो जो बहुत सारे जो जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, राम का नाम नहीं सुना, उन्होंने आकर विविध प्रकार से प्रभुपाद की मदद की, और उससे क्या हुआ, उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ गई, आगे जाकर वो बड़े वैष्णव हुए, और नहीं भी हुए तो अगले जन्म में हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी को कोई भी छोटी मोटी मदद करने की वजह से, चाहे कोई म्लेच्छ कुल का हो या यवन कुल का हो, वैष्णव की सेवा करने से, ये भागवतम में लिखा है, क्या कहा है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यवना खसा दया ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो भगवान इतने प्रभ विष्णु हैं कि उनके भक्त भी इतने प्रभावी हैं कि उनकी कोई सेवा करें तो कोई म्लेच्छ यवन है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकश है, वो भी क्या हो गया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जीव गोस्वामी धीरा धीरे जनप्रियो है। तो जो दुष्ट है या सज्जन है, दोनों का उद्धार वैष्णव करते हैं। तो ये कुछ अभी 10 मिनट बाकी हैं, 8 मिनट, तो उसमें मैं जीव गोस्वामी ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, हर ग्रंथ में क्या लिखा है दो दो लाइन में बताऊंगा। तो देखिए, प्रमुख ग्रंथ उनके हैं तत्व के संबंध में षट संदर्भ है, और लीला के संदर्भ में गोपाल चंपू है। तो शुरू में थोड़ा सा गोपाल चंपू के बारे में, और सॉरी तत्व तत्व संदर्भ में बतलाया है कि सारे प्रमाणों में शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है, वेदों का प्रमाण श्रेष्ठ है, और सारे वेदों में क्या श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। ये तत्व संदर्भ में बतलाया है, ये सार में बतलाया है, बहुत कुछ बतलाया है लेकिन एक संक्षेप में इतना बतलाया। फिर भागवत संदर्भ में क्या बतलाया, कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान से आकर भी सब कुछ भगवान के समान नहीं है। तो उसका उदाहरण बतलाया है, एक उदाहरण हम स्मरण में रखेंगे तो पूरा भागवत संदर्भ का निचोड़ समझ में आ गया। सूर्य, सूर्य का जो अंतर्गत तेज और बहिर्गत जो सूर्य की रश्मि किरणें और सूर्य का प्रतिबिंब, ये सब कुछ सूर्य से आकर भी, ये सब कुछ तो सूर्य से आता है लेकिन सूर्य के समान सब कुछ नहीं है। क्या क्या बतलाया, सूर्य, सूर्य का जो ग्रह और सूर्य का जो आभा किरणें, और चौथा यानी सूर्य का प्रतिबिंब, ये चार, सूर्य मतलब साक्षात कृष्ण के समान है। सूर्य का जो मंडल स्थित तेज है वो सूर्य की चित शक्ति है, यानी कि कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण का आध्यात्मिक धाम है, कृष्ण के पार्षद हैं, ठीक है, वो मंडल स्थित तेज कृष्ण सूर्य का। फिर जो रश्मि जो सब जगह फैली हुई है वो किसके समान है, जीवों के समान, किरणें हैं ना वो जीवों के समान, और प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब प्रधान के समान, भौतिक जगत के समान। हम कहते हैं ना ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, ये समझ में आ गया, मतलब भागवत संदर्भ हो गया इधर। तो आगे परमात्मा संदर्भ है, उसमें दो चीज बतलाई है, ये भगवान जो बतलाए थे ना पिछले, इसमें उसके ही आभा स्वरूप ब्रह्म है और उसके ही अंश स्वरूप परमात्मा है, इतना बतलाया। और माया के बारे में थोड़ा बतलाया, परमात्मा यानी कि ये माया का जगत को में व्याप्त है ना, तो माया के बारे में बतलाया, दो शक्तियां माया की, प्रक्षेपात्मिका आवरणात्मिका, आवरणात्मिक शक्ति क्या करती है, हम कृष्ण के दास है भुला देती है, और प्रक्षेपात्मिक शक्ति क्या कहते हैं, हम दूसरा कुछ है ऐसा अहंकार दिलाती है। तो ये हो गया परमात्मा संदर्भ। फिर कृष्ण संदर्भ में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कैसे सारे अवतारों के स्रोत है ये बतलाया, और उदाहरण दिया पूर्ण चंद्र। तो पूर्ण चंद्र और अष्टमी के चंद्र में कुछ फर्क है क्या? एक 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 दृष्टि से नहीं है लेकिन एक दृष्टि से है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण पूर्ण चंद्र है और बाकी सारे अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, रामचंद्र अवतार, ये सब प्रथमा का चंद्र, द्वितीय का चंद्र, अष्टमी का चंद्र, एकादशी का चंद्र, चतुर्दशी का चंद्र, हाँ इसके जैसे, हाँ कला है, हाँ कलाएं हैं, हाँ बलराम जी भी त्रयोदशी का चंद्र समझ सकते हैं और कृष्ण है पूर्ण चंद्र। तो इस प्रकार से ये पूर्ण चंद्र को समझ में आया, मतलब कृष्ण संदर्भ समझ में आ गया। फिर भक्ति संदर्भ कह रहे हैं कि भक्ति यानी शुद्ध भक्ति ही भागवतम का निचोड़ है, और वो कर्म ज्ञान से अनावृत जब करेंगे तो वो ही जीव का संपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, जिससे जीव संपूर्णतया प्रसन्न हो सकता है। और ये भक्ति का सदैव पूर्ण गुणगान उसमें किया गया है। और भक्ति में भी सबसे प्रमुख बतलाया है हरिनाम संकीर्तन। बोले सारे भक्ति के अंग हरिनाम संकीर्तन के साथ ही होने चाहिए, ऐसा ऐसा जो निष्कर्ष भक्ति संदर्भ में बतलाया। और अंत में प्रीति संदर्भ, प्रीति संदर्भ में बतलाया कि भगवान के प्रति प्रेम ही हमारा सब कुछ है। जैसे कामियों की विषयों के प्रति प्रीति होती है, वैसे हमारी कृष्ण के प्रति प्रीति होनी चाहिए। और ठीक है, ये सारे षट संदर्भ आज हमने संक्षेप में समझ लिया। और अभी गोपाल चंपू की एक छोटी लीला 2 मिनट की हम सुनेंगे और यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो वही भागवत की लीला है, लेकिन गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी अपने लीला दृष्टि से देखकर और थोड़ा सा विशेष बतलाते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ती है, वो तो मटकी फोड़ दी उन्होंने जिसमें मंथन हो रहा था, और यशोदा मैया ढूंढ रही है कृष्ण को, किधर गए किधर गए, ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो कृष्ण को देखती है, देखा है कि मुंह में सब मक्खन लगा हुआ है। तो यशोदा मैया कहती है कि अरे रुक, अपने घर पे चोरी करता है, आज तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया मुझे मत मारो, मेरे पिता के वंश में आज तक कोई चोर हुआ ही नहीं है, शायद से आपके वंश में कोई, आपके पिता पितामह कुछ चोर हुए होंगे जिसके कारण मैं अभी आपको चोर की तरह लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इतने छोटे हैं लेकिन वाद विवाद करने में कितने पहले से ही माहिर है। तो यशोदा मैया हंसती है और कहते हैं अच्छा तुमने चोरी नहीं की, तो फिर ये मटका कैसे टूट गया? तो कृष्ण कहते हैं कि हर चीज जब भी बनती है तो टूटने के लिए तो बनती है, ये पूरा भगवान का व्यवस्था ही ऐसा है करके। वो कुछ ना कुछ जो बनता है, निर्माण हो रहा है, वो कभी ना कभी टूटेगा। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा फिर ये बंदरों को मक्खन किसने खिलाया फिर? तो बोले जिसने बंदरों को बनाया उसने बंदरों को खिलाया, मेरा क्या कसूर है उसमें? तो यशोदा मैया थोड़ी सी अभी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी हंस के कहती है अभी सच में बताओ ये टूटा कैसे, ये जो मटका जिसमें मैं मथ रही थी वो टूटा कैसे? तो कहते कि मैया आपको याद नहीं है हड़बड़ी में सब तरह ध्यान नहीं रहता, तो आपने इतने मोटे मोटे नूपुर पहने हुए हैं पैर में जो सोने के हैं, और जब ही आप उठ के दौड़ के जा रही थी वो दूध को निकालने के लिए जो उफन के बाहर आ रहा था, तो आपके पैर के नूपुर लग गए मटकी को और वो टूट गई। तो यशोदा कहती है कि अरे ऐसा हुआ तो तुम्हारे मुंह को क्यों लगा है मक्खन? अगर मेरे नूपुर की वजह से टूटी है तो तुम्हारे मुंह को कैसे लग गया बटर? जो मक्खन है आपके मुंह तक कैसे पहुंच गया? तो कहते हैं कि मैया, मैं देखता हूं कि रोज एक बंदर आता है और अपना हाथ मटकी में डालकर आप इतना मेहनत से मंथन करके बनाती हो, तो उसकी कुछ कदर नहीं करता ये बंदर, और अपना हाथ उसमें डाल देता है। तो आज मैंने तुरंत उसको पकड़ लिया, जैसे ही उसने पकड़ लिया वो मुझे दांत दिखाने लगा, और हाँ मेरे को ऐसा झटक के जाने लगा और उसका हाथ मेरे मुंह को लग गया। तो इसलिए मेरे मुंह पे अभी मक्खन दिख रहा है। अभी बतलाओ मैं चोर हूं या कौन हूं? तो कहती है, अरे तुम चोर तो हो ही, उसके साथ बड़े बात बतंगड़ करने वाले एकदम धूर्त भी हो। अभी तुम और तुम्हारी ये उखल दोनों को साथ में सजा देनी पड़ेगी मुझे। तो इस तरीके से वो कृष्ण को उखल के साथ बांधती है। तो ये जो यशोदा मैया और कृष्ण के साथ जो संवाद है, वार्तालाप, ये तो भागवतम में इतना विस्तृत नहीं दिया है। उसमें बस बतलाया कि यशोदा मैया भागती है और उसको पकड़ लेती है, यशोदा मैया भागते हुए कृष्ण को। तो ये जो वार्तालाप है, ऐसे सुंदर सुंदर वार्तालाप गोपाल चंपू जैसे ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी ने लिखे हुए हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने एक गुरु सेवा का आदर्श, वैष्णव सदाचार का आदर्श अपने गुरु से सीखा, वैसे हम अपने जीवन में गुरु सेवा, गुरु आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उनको समझने की शक्ति और उत्साह हमें वो दे दें, और सारे इसका निचोड़ जो है भक्ति का, वो तो हरिनाम संकीर्तन है, धाम सेवा है, जो पांच मुख्य भक्ति की अंग बताए हैं उसमें हमको रुचि मिले, ऐसे जीव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्रील जीव गोस्वामी आविर्भाव महा महोत्सव की जय, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।
श्रीमान माधव।